भौबीजाङ्कुरुजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं। सबके मन में ऐसा विचार आता है कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, काश हम उससे भी बेहतर ढंग से जी पाते। हम अपने जीवन से संतुष्ट तो हैं कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे भी बेहतर जीवन यदि जिया जा सके तो उसके लिए प्रयत्न हम करें। और सचमुच ऐसा संभव है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं हम चाहें तो अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा उससे भी बेहतर ढंग से अपना जीवन जी सकते हैं। जीवन जीने का बेहतर ढंग क्या है? हमारे जीवन में भौतिक संसाधनों की पूर्ति कर लेना हमें लगता है कि जीवन जीने का बेहतर ढंग है, लेकिन जिन लोगों के पास जीवन के सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध हैं उनके मन में भी ये बात जब तक आती ही है कि मैं और बेहतर ढंग से जीवन जीऊं, तब इसके मायने ये है कि भौतिक सुख सुविधा के सारे साधन हो जाने के बाद भी जीवन बेहतर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जीवन अच्छा तब बनता है जब हमारी चेतना स्वाधीनता का अनुभव करती है, जब हमारी चेतना निर्मल और सरल होती है। इसी बात का अभ्यास हमें करना चाहिए। लेकिन ये जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वे हमारे जीवन में सहसा नहीं आएंगी, हमें उसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। और सबसे पहले तो हमें अपने भीतर जो कमजोरियां हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ मजा ये है कि हम अच्छा जीवन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उनको भी हम ज्यों का त्यों रहने देना चाहते हैं। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ संभव है? मेरा जीवन भी अच्छा बन जाए और मेरे जीवन में जो बुराइयां हैं वे भी बनी रहें? नहीं, मुझे अपनी बुराइयों को निकालना पड़ेगा और मेरे जीवन में मुझे अच्छाइयों के लिए निरंतर प्रयत्न करना होगा। बुराइयों को निकालने का पहला कदम है कि हम उन्हें स्वीकार कर लें, अपनी भूलों को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को हम सहसा स्वीकार नहीं कर पाते। हम अपने जीवन के बारे में दूसरे से सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, कम से कम अपनी गलतियां, भूलें और कमियां हम दूसरे से सुनना भी पसंद नहीं करते, ना हम स्वयं अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार कर पाते हैं, ना दूसरे से सुन करके हम उन्हें मानने तैयार होते हैं। और यही दोनों कारण हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनने में बाधक बनते हैं। पहली आवश्यकता यह है कि हम स्वीकार करें जहां हम कमजोर हैं। दूसरा, यदि हमारी उस कमजोरी को हमें बताता है तो हम उसे सहज स्वीकार करें। निकालने की प्रक्रिया इसके बाद ही संभव है। डॉक्टर डायग्नोस करता है, पेशेंट स्वीकार करता है कि हाँ सचमुच, और भी अपनी तरफ से बताता है कि डॉक्टर साहब ये भी है और ये भी मुश्किल है, ये भी तकलीफ है, और उस तकलीफ का कारण जब डॉक्टर बताता है तो उसे भी स्वीकार करता है कि हाँ डॉक्टर साहब वाकई में मेरे से ऐसी गलती हुई, इसलिए ये डिजीज़ इस तरह की मुझे हो गई। मैं अपने खान पान को ठीक कर लूँगा, मैं अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लूँगा, आपने मुझे ठीक बताया, क्योंकि वो स्वस्थ होना चाहता है। वो अपनी अस्वस्थता को स्वीकार नहीं करे अगर तो स्वस्थ होने का कोई उपाय नहीं है। ठीक इसी तरह हमारे भीतर जो कमियां और कमजोरियां हैं उन्हें हम सहज स्वीकार करते हैं तो फिर वे कमियां या कमजोरियां धीरे धीरे हमारे भीतर से निकलना शुरू हो जाए। मैं एक घटना अपने जीवन से संबंधित हमेशा सुनाया करता हूँ जब इस बात पर विचार करता हूँ। बच्चों के साथ मुझे शुरू से ही अच्छा लगा करता था। 1977 में और जब हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि हम अपना समय डोनेट कर सकते हैं, भले हमारे पास और कोई चीज़ ना भी हो देने के लिए, पर समय तो है, तो किस तरह हम अपना समय डोनेट करें, तो ये तय हुआ कि एक एक घंटे 30 मंदिर हैं, 30 लोग तैयार हों और एक एक घंटे एक मंदिर में और बच्चों के लिए समय दें, बच्चों को नैतिक शिक्षा के लिए अपना समय निकाल करके हम लोगों ने देना शुरू किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब बच्चे पढ़ रहे थे और अचानक बीच में बिजली चली गई, तो जैसा जनरली बच्चों की आदत होती है कि बिजली बंद हो जाने पर शोरगुल करते हैं, तो उन्होंने भी शोरगुल करना शुरू किया और किसी ने विसिल भी बजा दी। अब इसमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमने उन्हें ये मंदिर है इस बात का कभी एहसास ही नहीं कराया। हमने अगर उन्हें मंदिर है इस बात का एहसास करा दिया होता तो मंदिर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये उन्हें अपने आप सूझता। लेकिन उन्हें तो मंदिर में बैठे होने के बाद भी ये एहसास नहीं होता कि वे मंदिर में बैठे हैं, हमें ही नहीं होता, फिर उनको क्या होता। हम भी तो मंदिर में बैठ कर के और कितनी कितनी दुर्भावनाएं लोगों के प्रति रख लेते हैं, कितना कितना मन अपना कड़वा और खट्टा कर लेते हैं। हमें उस क्षेत्र की विशुद्धि का एहसास ही नहीं हो पाता। उन्हें भी नहीं हुआ और उन्होंने विसिल बजाई। बच्चे शोरगुल करें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वे विसिल भी बजाएं मंदिर के भीतर, इस बात के लिए तो उन्हें समझाना पड़ेगा, डांटा भी नहीं जा सकता। समझा नहीं जा सकता है। उन्हें रियलाइज कराना पड़ेगा कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। सचमुच यदि हम सब इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि जहां हम गलत करें वहां हम इस बात को रियलाइज करें कि हम यहां गलत हैं, तब फिर तो जीवन हमारा कितना सुंदर होगा इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जब लाइट आ गई तो मैंने बच्चों से यही कहा कि जिसने विसिल बजाई हो वो खड़े हो जाए, लेकिन ऐसी आदत ही नहीं थी। आदत तो अपन को नहीं है, बच्चों को कहां से होगी कि कोई उन्हें उनकी गलती के लिए कहे कि स्वीकार कर लो। कौन स्वीकार करता है? अपन में ही से किसी को कहें कि आपके भीतर ये कमी है तो फौरन अपन खड़े होकर कहेंगे कि हम मानहानि का दावा कर देंगे आपके ऊपर, आपने हमारे बारे में ऐसा कहा, हम ऐसे नहीं हैं। होते हुए भी शायद ऐसा करेंगे अपन। कौन कौन स्वीकार करता है अपनी कमियों को? कौन कौन कह सकता है कि मैं गलत हूं? इसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत ताकत का काम है ये। किसी ने स्वीकार नहीं किया तो फिर मेरे मन में आया कि कैसा करें। तो जो छोटी छोटी गुड़िया लोग थी उनको मैंने कहा कि बेटे तुम जाओ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे तो मुंह में हाथ डाल के विसिल बजा नहीं सकते। अब आजकल की गुड़िया लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो उस समय 1977 वाली बात, अब तो बहुत जमाना बदल गया। फिर भी उनमें इस बात की अभी तो उतनी मात्रा नहीं है, रेशियो आज भी कम है कि वो इस तरह के कामों में शामिल नहीं होंगे। तो सबको विदा करने के बाद फिर जो बच्चे बचे उनको मैंने अपनी जगह पे खड़ा किया। मैंने कहा कि मैं आता हूं तुम्हारे पास, और मेरी तरफ देख करके सिर्फ ये कहना कि मैंने नहीं बजाई विसिल, बस इतना ही, मैं और तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सिर्फ मेरी तरफ देख करके और ये कहना कि मैंने नहीं बजाई। मैं पहले वाले बच्चे के पास पहुंचा, उसने तो आंख ही नहीं उठाई और इसके पहले उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो सिर झुकाए बोलता कि मैंने नहीं बजाई। मैं दूसरे के पास पहुंचूं, दूसरा भी रोने रोने को हो गया। तीसरे के पास तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले उन 20-25 बच्चों में से 5 बच्चों ने सिर नीचा करके हाथ ऊपर कर दिया कि हमने बजाई है, आप हम तक आएंगे ये तो हम शायद सहन भी नहीं कर पाएंगे, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। मुझे क्या करना था, मैंने बाकी बच्चों को विदा कर दिया, उन 5 बच्चों को रोक लिया। वे थोड़े से घबराए क्योंकि आज तक उन्हें सच बोलने का पनिशमेंट ही मिला है। जब जब भी हमने किसी को सच बोलने का पनिशमेंट दिया है तो व्यक्ति ने झूठ का ही आलंबन और उसका ही आश्रय लिया है, उसे ही ठीक माना है। कोई झूठ बोलता है, कोई अगर गलत करता है तो मानिएगा कि हमारी गलती है, हमने उसे झूठ बोलने के लिए और गलत करने के लिए प्रेरित किया होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने अच्छा किया होगा तो हमने पीठ नहीं थपथपाई, जब उसने अच्छा किया होगा तो हमने उसका सम्मान नहीं किया। अच्छाइयों का जिस देश में सम्मान नहीं होता वहां बुराइयां बढ़ती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि यदि निरंतर बुराइयों को बढ़ने का अवसर मिल रहा है, संगठित होने का अवसर मिल रहा है, चाहे हमारे भीतर हो चाहे किसी और के भीतर, तो इसके मायने हैं कि अच्छाइयों का सम्मान कम हो गया है, इसलिए अच्छा करने की लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती है। वे 5 बच्चे बहुत घबराए कि सच तो बोल दिया है, अब पता नहीं क्या होता है, पर मुझे कुछ करना थोड़े ही था। उनसे यही कहा मैंने कि बड़े वर्णी जी की फोटो लगा रखी थी वहां, मैंने कहा कि बाबा जी के सामने हाथ जोड़ो। मैं कौन होता हूं, मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ो, मैं तो सिर्फ तुम्हें चार बातें धर्म की सिखाता हूँ, पर जिन्होंने अपने जीवन में धर्म धारण किया है उनकी तरफ देखो, उनके हाथ जोड़ो और कहो कि बाबा जी ये मंदिर था, फिर भी मैंने ऐसी गलती करी, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। उन पांचों बच्चों ने हाथ जोड़ करके ऐसा ही कहा और मैंने उन्हें विदा दी। उसके बाद कितनी बार तो ऐसा अवसर आया जबकि पढ़ाते समय बिजली चली जाती थी और बच्चे शांत बैठे रहते थे, पढ़ाई चलती रहती थी, लोग आकर के लालटेन रख जाते थे और ये कहते थे कि अरे सब बच्चे शांत बैठे हुए हैं, लालटेन तो जला ली होती। मैंने कहा नहीं, वैसे भी बिना उसके भी काम चलता है, भीतर अगर एक बार रोशनी हो जाए तो बाहर का अंधेरा फिर तकलीफ नहीं देता। लेकिन क्या करें, यहाँ तो बाहर इतना उजाला होने के बाद भी हमारे भीतर की बुराइयों का अंधेरा इतना है कि वो रोशनी भी हमारे जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाती, अच्छाइयाँ हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाती जब तक कि हम अपनी उन बुराइयों को रियलाइज नहीं करेंगे, उन्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये उदाहरण मुझे लगता है कि हम सबके लिए प्रेरणा देता है कि हाँ सचमुच कभी भी अच्छाई का अनादर नहीं करना, कभी किसी के भीतर कुछ अच्छा दिखे तो पीठ थपथपाना, प्रशंसा करना, उससे चूक मत जाना, क्योंकि वो हमारी चूक दूसरे के लिए हो सकता है कि अच्छाइयों से विमुख कर दे और बुराइयों की तरफ ले जाए। क्योंकि जहां व्यक्ति को बुराई का भी सम्मान होते मालूम पड़ने लगता है, वहां व्यक्ति सहसा बिना सोचे बिना चाहे और बुराई की तरफ चला जाता है। जब झूठ बोलने में लाभ दिखाई पड़ने लगे तो कौन व्यक्ति होगा जो कि सच बोले? जब सच बोलने में व्यक्ति को पनिश किया जाए तो कौन व्यक्ति होगा जो कि झूठ का सहारा नहीं लेगा? इसलिए अपने भीतर की बुराइयों को स्वीकार करके और हम आगे बढ़ें, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम सब के बीच रहते हैं इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हम हिल मिल करके रहें, मिलजुल करके रहें। मिलजुल के रहने के मायने क्या है? दो लोग एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन एक साथ होना बहुत कठिन होता है। हम सब एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन एक साथ हैं ये बहुत कठिन चीज है। वो तो तब मालूम पड़ता है कि कौन एक साथ है, जब व्यक्ति अपने जीवन में सुख और दुख के अवसर में एक दूसरे के साथ दिखाई पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि हाँ वास्तव में धर्म सभा में एक साथ बैठ जाना अलग बात है और एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ होना ये बिल्कुल अलग बात है। ये बात जुदी है कि हम दूसरे के सुख दुख शेयर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, सबको अपने सुख दुख अकेले अकेले ही भोगना पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा भाव, एक ऐसी फीलिंग हमारे भीतर हो कि मैं अपना सुख बांटूं, दूसरे के सुख में शामिल हों तो मेरा सुख भी दूना होता है, दूसरे का भी दूना होता है। विनोबा सुख दुख का गणित बताते थे तो यही कहते थे कि सुख बांटो तो दूना हो जाता, दुख बांटो आधा रह जाता। दूसरे की विपत्ति आने पर कुछ मदद ना कर पाए तो कम से कम उसके दुख को तो सुन लें जिससे वो गुजर रहा है। क्यों, हम भी तो ये चाहते हैं कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आए तो चार लोगों से कह तो सकूं कि बहुत दुख में हूं, क्या वे मेरा दुख दूर कर देते हैं? नहीं, वे सिर्फ सुन लेते हैं तो मन को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई है जो मेरे दुख को सुन तो रहा है, मुझे मान रहा है कि मैं दुखी हूं। ये जो एक भाव है एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का, वो करता क्या है? वो हमारे जीवन को परिष्कृत करता है, वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनता है। दूसरे पर दुख आने का कारण है उसकी अपनी कोई कमी। मेरे ऊपर भी जब कभी दुख आएगा तो मैं अपनी कमी मानूंगा, क्योंकि मैं दूसरे के दुख में
यही तो विचार करता हूं कि इस पर ये जो विपत्ति आई है इसने कोई कर्म ऐसा किया होगा। लेकिन जब वही विपत्ति मेरे ऊपर आती तब तो मैं ये कहता हूं कि किसी और ने मेरे लिए ऐसा किया होगा। नहीं, उस समय भी मैं ये फील कर सकूं कि जैसे मैं दूसरे के दुख में ये विचार करता हूं कि इसने कुछ गलत किया होगा तब तो इसके ऊपर दुख आया है, ऐसे ही मैं ये सीखूं उन क्षणों में कि जब मेरे ऊपर दुख आए तब भी मैं यही विचार करूंगा कि मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे मेरे ऊपर दुख आया। दूसरे के सुख को देख करके मैं सहज रूप से ईर्ष्या कर लेता हूं तो दूसरे के सुख में शामिल ही नहीं हो पाता। दूसरे के सुख में सुखी होना बहुत कठिन बात है, बहुत अत्यंत कठिन बात है। दूसरे के दुख में पजोखा करने चले जाना बहुत आसान है, पजोखा कहलाता है, बैठ भी जाओ कि दूसरे को दुख है सो चलो रे अपन भी रोआए वो तो रो ही रहोगे, सो उसमें रो करके आ जाना बहुत आसान है। लेकिन दूसरे के सुख में सुखी होना बहुत कठिन है, दूसरे की खुशी में खुश होना बहुत कठिन है। मैंने बहुत पहले सन 1981-82 में ये बात लिखी थी कि मेरी अर्थी को बेही कंधा लगाएं, बहुत कड़ी बात लिख दी थी मैंने। पहले मैं थोड़ा सा ज्यादा बहुत शार्प कमेंट्स करता था मैं, अब तो मैंने सुधार लिया, थोड़ी आदत मेरी सुधर गई। हाँ नहीं, उसमें स्वीकार करने में कोई बहुत मुश्किल थोड़ी होनी चाहिए, थी आदत बहुत शार्प कमेंट करने की, दूसरे को चुभ जाती थी चीज, अभी भी है थोड़ी सी, अब ध्यान रखता हूं कि वो बात मुझे भी चुभ सकती है। मेरी अर्थी को वे ही हाथ लगाएं जिनने मेरे सुख में सुख माना हो, वरना हाथ नहीं लगाएं। ऐसे दुख में संवेदनशीलता व्यक्त करने वाले बहुत मिल जाएंगे मुझे, लेकिन मेरे सुख में जिनने सुख माना कोई नहीं मानता। सुख में ईर्ष्या करने वाले और उस व्यक्ति के सुख को कैसे कम कर दूं इसकी जुगत में रहने वाले संसार में सैकड़ों। जैसे अपन कहते कि सब कछु हो ही नहीं रहो कर ले, सब अच्छो चल रहो तो कछु भाव चाहिए, सब अच्छो काय चल रहो। झरे पूछे में कचरा फैलाने की आदत अपन की है, किसी और की नहीं, अपन की। ये आदत हमारी अपनी कमजोरी है, हमारी अपनी हमारी कमी है, ये हमें इसे भी निकालना चाहिए कि कहीं कुछ बहुत अच्छा है तो क्या हम उसमें सैर शामिल होते हैं? नहीं हो पाते हैं तो होना चाहिए। एक मां पहुंची थी साधु बाबा जी के पास में, बाबा जी मेरे कोई संतान नहीं है, आप भगवान से प्रार्थना कर दें, आपको तो भगवान से सीधा सीधा संबंध है, आपकी उनसे निकटता है, शायद आपकी प्रार्थना का ज्यादा बल होगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे संतान हो। बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से भगवान से प्रार्थना कर दूंगा, तुम बैठो। बाहर चबूतरे पर बैठने के लिए कह दिया। और इतना ही नहीं, जब तक मैं भगवान की पूजा करूं पाठ प्रार्थना करूं तब तक तुम ये लो, थोड़े से चने हैं मेरे पास उनको खाना, तब तक मैं करता हूं। और बाबा जी अपनी प्रार्थना में लग गए, लेकिन बाबा जी देख रहे थे कि वो मां क्या करती है। उस मां को जैसे ही चने मिले उसने चुपचाप एक कोने में जाकर के चने निकाल करके खाना शुरू किए। अभी निकाल के एक मुट्ठी में बाहर लिए लिए थे कि आसपास खेल रहे बच्चों ने घेर लिया, माँ हमको भी चने दे दो, हमको भी खाने के लिए चने दे दो। अरे नहीं नहीं, चलो सब खेलो अपना भागो, कैसे बच्चे हैं यहाँ पर, खाने ही नहीं देते हैं। और इसको उधर भगा दिया, उसको वहाँ डांट दिया, सब बच्चों को दूर कर दिया, कोने में अकेले जा करके और चुपचाप दाने चने के खा लिए। बाबा जी ने अपनी प्रार्थना जो भी करना थी करी। जब माँ आई वापस कि बाबा जी हमारी प्रार्थना आपने भगवान से कर दी, हमें संतान चाहिए, तो बाबा जी ने कहा कि प्रार्थना तो कर दी है लेकिन मुश्किल है कि वो स्वीकार। अरे आपके द्वारा की गई प्रार्थना कैसे स्वीकार नहीं होगी? हाँ उसमें संदेह है। क्यों संदेह है? अरे जब तुम दूसरे की संतान को भी प्यार नहीं दे सकती तब तुम्हारी अपनी संतान कैसे प्राप्त होगी? तुम्हें कैसे मिलेगा वो सुख जो जिसमें कि तुमने दूसरे के सुख में सुख नहीं माना, तो वो सुख तुम्हें कैसे मिल सकता है। बहुत सीधा सा उदाहरण है लेकिन इतनी आसानी से समझ में आ जाए बहुत कठिन है। जिंदगी लग जाती है इसके लिए और जब तक ये हम नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा जीवन जैसा हम वास्तव में बेहतर कहते हैं वो जीवन हमें प्राप्त नहीं होगा। कोशिश करें। और इतना ही नहीं, मैं बच्चों को एक उदाहरण हमेशा सुनाया करता हूं, शायद उससे समझ में आए। गांधी जी के जीवन का है। एक बार उनसे मिलने के लिए उन्होंने किसी को समय दिया तो वो लोग गांधी जी की पंक्चुअलिटी जानते थे कि समय के पाबंद हैं, 5 मिनट पहले ही पहुंच गए, वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं और वहीं से बापू दिखाई पड़ रहे हैं, वो रसोई में बैठे भोजन कर रहे हैं। अब उन परिवारजनों के साथ में एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का, वो भी बापू से मिलने आया था। बापू बच्चों को प्यार करते हैं उसे मालूम था, तो वो मां से बोलता है कि आप कहती हैं कि बापू अच्छे हैं पर बापू तो बहुत गंदे हैं। अरे चुप रहे तू, सुन लेंगे बापू, मैं क्या समझा कि लाई थी तेरे को, ऐसा बोलता है बापू बहुत अच्छे हैं। नहीं बापू अच्छे नहीं हैं, बापू गंदे हैं। अब क्या समझाएं उसको। ये बात जितनी उसको मना करी उतने जोर से उसने कही और बापू को सुनाई पड़ गई। बापू मुस्कुरा दिए, भोजन करके 5 मिनट में आए, सबसे पहले बेटे के सिर पे हाथ फेरा, अच्छा बताओ तो मैं कैसे गंदा हूं। बापू आप सचमुच गंदे हैं। कैसे, यही तो पूछ रहा हूं। इसलिए गंदे हैं क्योंकि जब हमारे घर में कोई खाने की चीज आती है और हम अकेले अकेले खाते हैं तो मां कहती तुम बहुत गंदे हो। बापू आप भी तो अकेले अकेले खा रहे थे इसलिए आप भी गंदे, आपने दूसरे का ध्यान ही नहीं रखा। ऐसा अपन रखते हैं क्या ध्यान। बापू का उदाहरण सुनकर के तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ऐसा जीवन में हमारा जीवन उदाहरण नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। हम कहां ख्याल रख पाते हैं अपने आसपास कि किसे मेरे माध्यम से, भैया सुख दुख तो उसके अपने कर्मों से मिलता है लेकिन किसी के सुख में निमित्त बनना और किसी के दुख में निमित्त ना बने हम इस तरह का प्रयत्न करना, क्या ये जीवन को अच्छा बनाने की आसान सी प्रक्रिया नहीं है? ऐसा नहीं कर सकते क्या हम? आसानी से कर सकते हैं। जरा सा जीवन जीते समय सुबह से शाम तक ये ध्यान रखें कि बनूं तो दूसरे के सुख में निमित्त बनूं, कभी कदाचित दिन भर में मैं दूसरे की पीड़ा में कारण न बनूं, इतना भी ध्यान नहीं रख सकते दूसरे का? रख सकते हैं लेकिन इसके लिए अपना मन बनाना पड़ेगा। और तीसरी चीज, दूसरे की जीत में अपनी जीत महसूस करना, ये और ज्यादा कठिन है लेकिन इससे लाभ बहुत होता है। दूसरे की जीत में हम अपनी जीत महसूस करके और जैसे जीतने का आनंद दूसरा लूट रहा है वैसे ही आनंद स्वयं पा लेते हैं। अभी तो हम दूसरे की हार में आनंदित होते हैं और मानिएगा कि स्वयं अपना पतन अपने हाथ से करते हैं। अभी तो किसी व्यक्ति को सम्मानित होते देखकर हम अपना अपमान महसूस करते हैं, काश ऐसा होता कि दूसरे के सम्मान में हम अपना ही सम्मान महसूस करते। ये तीसरा कदम बहुत अनिवार्य कदम है। वैसे तो ये तीनों कदम यदि हम अपने जीवन में एक एक करके रखें, अपनी कमियों को स्वीकार करना सीख लें, दूसरे के सुख दुख का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई हमारे सुख में शामिल हो और दुख बांट ले। और तीसरा कि अगर मैं कुछ हासिल करूं इस दुनिया में, कहीं मैं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ूं, जीत जाऊं, तो मैं अकेले ही आनंदित ना हों और भी लोग मेरी जीत में अपनी जीत मान करके शामिल हों, ऐसा भाव मेरे मन में आता है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम दूसरे की जीत में अपनी जीत माने। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं और शायद आज अपन इतनी ही बात अपने जीवन में उतारने के लिए तैयारी करें। वैसे मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि हम सब सचमुच अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तैयारी तो कर रहे हैं। आज सुबह सुबह ही मुझे एक व्यक्ति ने आके कहा कि मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में एक कदम ऐसा उठाया था जो मुझे नहीं उठाना चाहिए, मैंने आज वो कदम अपना वापस ले लिया, अब मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे लगा कि शायद अगर ऐसी शुरुआत हम सबके जीवन में हो जाए तो मैं तो इसे ही उपलब्धि मानता हूं। कितना भव्य आयोजन हुआ, कितने लोग आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसने अपने जीवन की कमियों को स्वीकार करके और उन्हें निकालने के लिए पुरुषार्थ किया। अगर एक भी ऐसा करता है तो आपके साथ मैं भी मानूंगा कि मेरा यहां होना सार्थक हो गया। अपन अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ऐसे ही धीरे धीरे करके शुरुआत करें। मैं तो आशान्वित हूं और बहुत अधिक आशान्वित हूं कि हम सब अगर इसी तरह रोज अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत जिम्मेदारी से विचार करते रहे, तो कोई वजह नहीं है वो काम करता रहा और जब उसका मरण हुआ तो बहुत मुश्किल आई, ये डिसाइड ही नहीं हो सका कि इसको कहां भेजा जाए, क्योंकि 50-50% वाला मामला था, 49-51 होता तो भी ठीक था, लेकिन 50-50 का मामला था, 50% पुण्य है तो 50% पाप है, दोनों बराबर हैं। अब उसके सामने चॉइस, हाँ ऐसी चॉइस बहुत मुश्किल से मिलती है, कोई देता वेता नहीं है, ये तो सिर्फ कहानी में है। उसको चॉइस मिली कि जनाब अब आपके चूंकि पाप और पुण्य बराबर बराबर है, इसलिए आप चूज कर लें, आपको स्वर्ग जाना है या कि नरक जाना है, ये आपकी चॉइस है। अपने को इतना अवसर नहीं मिलेगा, उसको मिल गया अवसर कि आप चॉइस कर सकते। उसने कहा ऐसा है क्या, ये मुझे चुनना पड़ेगा कि मुझे नरक जाना है कि स्वर्ग? उन्होंने कहा कि हाँ अब आपका ऐसा ही है, क्या करें। उसने कहा फिर मुझे दोनों जगह दिखाओ, मैं देखूंगा, मुझे जहां अच्छा लगेगा वहां पर रहूंगा, जब चॉइस की बात है। तो सबसे पहले उसने कहा मुझे नरक दिखाओ, मैं पहले देखूं वो कैसा है। तो नरक में पहुंचे, वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल था, ये कहानी वाला नरक है, वो एक्चुअल वाला नहीं तो गड़बड़ हो जाए, आप कहेंगे कि बताइए ये कहां लिखा हुआ है। ये कहानी वाले नरक में है कि एक बहुत बड़ा हॉल था और साथ हॉल में टेबल कुर्सियां लगी हुई थी, बहुत रोशनी हो रही थी उसमें, और टेबलों पर तो खाने की सामग्री जमी हुई थी, कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि सारे लोग उदास, बहुत निराश, एक दूसरे से अपशब्द कह रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, सब दुखी थे। समझ में नहीं आया उसे कि ऐसा क्या हुआ, खाने की सामग्री सजी हुई रखी है एक से एक बढ़िया, और ये सब आमने सामने बैठे भी हैं कुर्सियों पर, खाते क्यों नहीं है? और इतने दुखी और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, सारी व्यवस्था को दोषी ठहरा रहे हैं। तो बताया गया कि इन सब के जो है हाथ ऐसे बांध दिए गए, बीच में एक लकड़ी दोनों के बांध दी गई, ये मुड़ नहीं सकते, इनके हाथ मुड़ नहीं सकते। और जब तक हाथ नहीं मुड़े तो उठा के खाया कैसे जाए? तो निराश हैं, उदास हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। दुख का कारण बहुत स्पष्ट समझ में आया। चलते हैं स्वर्ग जाकर के देख लेते हैं वहां क्या स्थिति है। वहां पहुंचे तो वहां भी बिल्कुल उसी साइज का वैसा ही हॉल, उतनी ही लाइटिंग, वैसी ही टेबल कुर्सियां, और लोग बैठे हैं उस पर। लेकिन यहां के लोग बहुत प्रसन्न हैं, एक दूसरे से हंस करके प्यार से बात कर रहे हैं, आनंदित हैं। अरे इन लोगों को कुछ अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं क्या? बोले नहीं। तो क्या इनके हाथ नहीं बांधे गए? नहीं, इनके भी हाथ बांधे गए। अच्छा, फिर भी ये खुश हैं, फिर भी आनंदित हैं। हाँ, ये खुश हैं, आनंदित हैं। तो गौर से उसने देखा कि हाथ बंधे हुए हैं तो खुद तो उठा के नहीं खा सकते, लेकिन सामने वाले की थाली में से सामने वाले को वो खिला रहा है, ये उसको खिला रहा है, वो उसको खिला रहा है, सब आनंदित हैं। इसी का नाम स्वर्ग है। कहां रहना चाहेंगे अपन? अभी आपसे थोड़ी पूछा गया, ये तो उससे पूछा गया था कि कहां रहना चाहेंगे। कोई भी तैयार हो जाएगा कि वो स्वर्ग में रहना चाहेगा, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले की तासीर कौन सी है? जो स्वयं के लिए नहीं, जो दूसरे की जीत में अपनी जीत, इसको खिलाऊं, अरे मैं तो ना खिलाऊं, मैं ही नहीं खा पा रहा हूं, इसको क्या खिलाऊं। हां, ऐसे तो नरक बन जाएगा, बन ही गया था नरक। और जो कहता है कि मैं खा पाऊं या नहीं खा पाऊं, मैं तो दूसरे को खिलाता हूं, तो दूसरा वाला भी यही सोच रहा है कि मैं इसे इसकी जीत में मैं सुखी हूं। इस तरह का सोच अगर हमारे भीतर आ जावे तब देखिएगा कि हमारा जीवन भी कितना सुखद, कितना आनंदित हो सकता है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम चाहें तो इनसे लाभ लेकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आज इसी भावना के साथ कि हम सब इन छोटी छोटी सी बातों से हो सके तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न शुरू करें। हम सबको ऐसी सद्बुद्धि आए, हम सब ऐसी भावना भाते हैं, नमोकार मंत्र करते हैं कि हमारा जीवन पहले से और अधिक बेहतर बन सके। इसी भावना के साथ अपन नमोकार करते हैं। ओ नमो अरिहंता, ओम नमो सिद्धा, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सौवसाहूणम्, चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्। सिद्धामंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सावु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो तो हे जिन वाणी वारती तो हे जपो दिन रे जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन उदक चंदन तंदुल पुष्प कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पुनीत पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति
क्यों।